आज है 9 फरवरी दिन बृहस्पतिवार। स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का नमस्कार। तमिलनाडु में पनीर सेल्वम और शशिकला के बीच सत्ता की रस्साकशी। सरकार किसकी बनेगी, फैसला करना है राज्यपाल को। मगर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी ही पार्टी के कुछ लोगों पर पनीर सेल्वम को भड़काने का आरोप लगाया।
हमारी पार्टी में 2-3 लोग ऐसे होंगे जिनका तमिलनाडु में कुछ स्टेक है और हो सकता है उन्होंने वहाँ घर बनाया या कोई जमीन खरीदा, मैं नहीं जानता।
विशेष इंटरव्यू सुनिएगा कार्यक्रम में। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार समाप्त हुआ। ओवैसी पर बीजेपी को मदद का आरोप लगाया समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने।
मैं तो बिल्कुल खुले मन से कह सकता हूँ कि ओवैसी साहब एक ऐसी पार्टी की मदद कर रहे हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए।
होंगी आपकी चिट्ठियां और खेल समाचार, लेकिन ये सब विश्व समाचारों के बाद।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी AIADMK में जारी राजनीतिक खींचतान के बीच कार्यवाहक मुख्यमंत्री ओ पनीर सेल्वम ने आज राज्यपाल सी विद्यासागर राव से मुलाकात की। ये मुलाकात करीब 10 मिनट तक चली। मुलाकात के बाद पनीर सेल्वम ने कहा कि सच्चाई की जीत होगी। पनीर सेल्वम ने कल कहा था कि उन पर पद छोड़ने के लिए दबाव बनाया गया था। राज्यपाल से अब पार्टी महासचिव शशिकला मुलाकात करेंगी। कीनिया के हाईकोर्ट ने डेडाब शरणार्थी शिविर बंद करने के सरकार के फैसले को पलट दिया है। ये शिविर सोमालिया की सीमा के करीब है। यहाँ सोमालिया के करीब 2.5 लाख शरणार्थी हैं। फैसला सुनाने वाले जज ने सोमालिया के शरणार्थियों को जबरदस्ती वापस भेजने को असंवैधानिक और शरणार्थियों के संरक्षण को लेकर अंतर्राष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन बताया। कीनिया की सरकार ने बीते साल सुरक्षा कारणों को लेकर कैंप को बंद करने का ऐलान किया था, लेकिन बाद में संयुक्त राष्ट्र के अनुरोध पर फैसले को स्थगित कर दिया था। कैंप में 2 साल से पढ़ाने वाले सैमुअल ओडावो ने कहा, कीनिया में 2 प्रमुख शिविर हैं। अगर सरकार सभी शिविरों को बंद करने का फैसला करती तो हम कहते कि हमें शरणार्थियों की ज़रूरत नहीं है और हम कैंप बंद कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम डेडाब को बंद करेंगे और वो सोमालिया के शरणार्थियों को निशाना बना रहे हैं। ये सही नहीं था। ये थे सैमुअल ओडावो के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। सीरिया के अलबाब से मिली रिपोर्टों के मुताबिक इस्लामिक स्टेट के साथ संघर्ष में तुर्की के 5 सैनिकों की मौत हो गई। तुर्क सैनिकों ने सीरिया के विद्रोहियों के साथ बुधवार को अलबाब के पश्चिमी हिस्से में बढ़त बनाई थी। बीते 2 दिन के दौरान यहाँ 10 तुर्क सैनिकों की मौत हो चुकी है। उधर CIA के नए प्रमुख माइक पोम्पेओ अपनी पहली विदेश यात्रा के तहत तुर्की में हैं। तुर्की के नेताओं के साथ उनकी बातचीत में इस्लामिक स्टेट से संघर्ष का मुद्दा प्रमुखता से उठ सकता है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि सीरिया में जारी संघर्ष विराम के बाद भी उसकी ओर से भेजे जाने वाला राहत का सामान हजारों ज़रूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। मानवाधिकार मामलों के कोऑर्डिनेटर स्टीफन ओब्रायन ने कहा कि उनके संगठन को हर मोड़ पर रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि सीरिया का प्रशासन सामान बांटने की इजाज़त नहीं दे रहा है। चीन ने अमरीकी राष्ट्रपति के दोनों देशों के बीच रचनात्मक रिश्ते विकसित करने से जुड़े बयान का स्वागत किया है। ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को लिखे पत्र में रिश्ते बेहतर करने की बात के साथ नए साल की बधाई भी दी थी। अपने चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप ने चीन की व्यापारिक नीतियों को लेकर तीखी टिप्पणियां की थीं। उन्होंने वन चाइना पॉलिसी पर भी सवाल उठाए थे, लेकिन ट्रंप के हालिया बयान के बाद चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लुकोंग ने कहा, हम राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से राष्ट्रपति और चीन के लोगों को दी गई शुभकामना की सराहना करते हैं। चीन दोनों देशों के रिश्तों को बेहद अहमियत देता है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग का कहना है कि चीन और अमेरिका पर दुनिया की शांति को बहाल रखने की खास जिम्मेदारी है। हमारे बीच साझेदारी ही सही विकल्प हो सकता है। ये थे चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। फ्रांस की बिजली कंपनी EDF ने फ्लेमाविल परमाणु ऊर्जा केंद्र में धमाका होने और आग लगने की पुष्टि की है। कंपनी का कहना है कि 2 रिएक्टरों में से 1 को बंद कर दिया गया है, लेकिन पर्यावरण को कोई खतरा नहीं है। कंपनी का कहना है कि यह हादसा गैर परमाणु क्षेत्र में हुआ और इसमें कोई घायल नहीं हुआ। रिएक्टर 1980 के दशक में बनाए गए थे। रोमानिया के न्याय मंत्री फ्लोरिन योरडाकी ने इस्तीफा दे दिया है। भ्रष्टाचार के मामलों में राहत देने वाले सरकार के आदेश के खिलाफ हुए विरोध के बाद उन्होंने अपना पद छोड़ दिया। BBC समाचार।
ये BBC हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिनभर। आज आपके साथ मैं हूं राजेश जोशी। सुदूर दक्षिण में राजनीतिक हड़बोंग मची है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर किसका कब्जा होगा, ओ पन्नीर सेल्वम का या शशिकला का, इसका फैसला अब विधानसभा के सदन में होगा। राज्य के राज्यपाल सी विद्यासागर राव को तय करना है कि वो दोनों नेताओं में से किसे बहुमत सिद्ध करने को कहते हैं। राव ने इस्तीफा दे चुके मुख्यमंत्री पन्नीर सेल्वम से मुलाकात की है और इस समय जब आप कार्यक्रम सुन रहे हैं, सत्तारूढ़ पार्टी यानी ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम विधायक दल की नेता वीके शशिकला राज्यपाल से मिलने पहुंचने वाली थी। आइए ताज़ा जानकारी लेते हैं और चलते हैं स्थानीय पत्रकार इमरान कुरैशी के पास बेंगलोर, जहां से वो टेलीफोन लाइन के जरिए हमारे साथ हैं। इमरान कुरैशी, ये जो मुलाकात तय थी, क्या शशिकला राज्यपाल से मिलने पहुंच चुकी हैं?
हाँ, राज्यपाल से मिलने पहुँच गई हैं। अभी शायद उनकी बातचीत चलती होगी क्योंकि 7:30 बजे उनकी बातचीत, उनको अपॉइंटमेंट दिया गया था। अब और कहा जा रहा है कि उन्होंने जो लेजिस्लेचर, जो विधायक दल की जो का जो प्रस्ताव है वो, और उसके साथ उनके एमएलएस के, हर एमएलएस के पास से उन्होंने उस दिन एक साइंड चिट्ठी भी ली थी, जो शायद वो भी राज्यपाल को देंगे। अभी
135 विधायक शशिकला के साथ हैं, क्या ये पुष्ट खबर है?
135 नहीं होगी, थोड़े कम होंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि कल तक 130 थे और आज पन्नीर सेल्वम की कैंप के अनुसार करीब 22 उनके पास हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनका शशिकला के साथ जो विधायक हैं वो थोड़ा उनका नंबर कम हुआ है, मगर अभी उनके सामने तो, राज्यपाल के सामने तो ये कहेंगे कि उनके साथ पूरे 135
समर्थन है। अभी तो खैर पता नहीं चलेगा कि अंदर क्या बातचीत हुई। हम कार्यक्रम के दौरान कोशिश करेंगे आपसे एक बार फिर से संपर्क करने की, अगर कुछ और मालूमात जानकारी आपको मिले तो हमें बताइएगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद इमरान कुरैशी। इससे पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके ओ पन्नीर सेल्वम से राज्यपाल सी विद्यासागर राव ने मुलाकात की। दिन भर की घटनाओं पर एक रिपोर्ट इमरान कुरैशी की ही।
राज्यपाल विद्यासागर राव ने मुंबई से चेन्नई पहुंचने के बाद ओ पन्नीर सेल्वम से मुलाकात की। पन्नीर सेल्वम ने 3 दिन पहले आरोप लगाया था कि उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा इसलिए देना पड़ा क्योंकि उन पर दबाव डाला गया था। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि उसी दबाव में उन्होंने विधायक दल के नेता के तौर पर शशिकला का नाम प्रस्तावित किया। उन्होंने राज्यपाल की मुलाकात में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा वापस लेने की गुजारिश की। मुलाकात के बाद पन्नीर सेल्वम ने पत्रकारों से कहा, हमारी मुलाकात राज्यपाल से हुई है, हम आश्वस्त हैं कि अच्छा ही होगा। ये थे पन्नीर सेल्वम के शब्द। लेकिन इससे पहले पन्नीर सेल्वम ने कुछ राजनीतिक दांव भी फेंके। पहले उन्होंने अपने समर्थकों को कहा कि जयललिता का पोस्ट गार्डन का घर सरकार प्राप्त करेगी और उसको अम्मा स्मारक बनाएगी। जाहिर है कि इससे वो पार्टी का काडर जो शशिकला को पसंद नहीं करता है वो उनके तरफ पलटेगा। लेकिन दूसरी तरफ शशिकला के एमएलए और पूर्व शिक्षा मंत्री पांड्या राजन ने कहा, चिन्नम्मा के साथ 135 एमएलए, सारे संसद सदस्य और सारे काडर हैं। हमें भरोसा है कि राज्यपाल चिन्नम्मा को नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रण देंगे। ये थे पांडेराजन के शब्द। सवाल अभी इतना ही है, क्या राज्यपाल शशिकला को शपथ दिलाएंगे या और इंतजार करेंगे? बेंगलुरु से इमरान कुरैशी।
और आज जब तमिलनाडु में राजनीतिक ड्रामा चल रहा था, हमने भारतीय जनता पार्टी के नेता और राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी को अपने दिल्ली स्टूडियो आमंत्रित किया। उनसे हमारे संवाददाता सलमान रावी ने कई मुद्दों पर बातचीत की। तमिलनाडु का जिक्र आने पर डॉक्टर स्वामी ने राज्यपाल सी विद्यासागर राव पर तीखा हमला बोला।
नहीं, मैं शुरू में कह देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई लेना देना नहीं है, ना सरकार की है। अब संसदीय विधायक दल की मीटिंग हुई थी, उसमें सर्वसम्मति से उपास।
लेकिन उनका भी एक अपना संविधान है AIADMK का, जिसमें ये कहा गया है कि महासचिव जो नियुक्त होगा वो चुना जाएगा।
वो तो दूसरी बात है।
तो अब उत्तराधिकारी होगा कौन? चूंकि जब भी जयललिता संकट में आई, जब उनके खिलाफ केस हुए, जब उनको छोड़नी पड़ी गद्दी, तो पन्नीर सेल्वम को उन्होंने बनाया, शशिकला को भी बना सकते थे।
तो आदत से मजबूर नहीं है। तो जब उसने सिद्ध कर दिया कि मेरे पास बहुमत है, तो ये गवर्नर क्यों नहीं दे रहा उसको शपथ?
तो गवर्नर भी तो कोई, चूंकि बीजेपी ने अपॉइंट किया है, और इसलिए ये रीडिंग बिटवीन द लाइंस लोग कर रहे थे कि हो सकता है कि बीजेपी पन्नीर सेल्वम को बैक कर रही है, इस वजह से गवर्नर नहीं।
पहले ही कह दिया बीजेपी इसमें नहीं है, कि बीजेपी ने, हाँ बीजेपी के जैसे मैं हूँ, मैं संविधान को लेकर लड़ रहा हूँ, सब लोग कहते हैं वो शशिकला का पक्ष ले रहे हैं आप, हाँ क्योंकि फ़ायदा तो उसको होने वाला है, परंतु मैं कहाँ उसके पक्ष में हूँ, मैंने तो उसके ऊपर केस डाला हूँ, परंतु संविधान का जो मर्यादा है उसको भंग नहीं करना चाहिए, उसके लिए बोल रहा हूँ। हमारी पार्टी में दो तीन लोग ऐसे होंगे जिनका तमिलनाडु में कुछ स्टेक है, हाँ, और हो सकता है उन्होंने वहाँ घर बनाया या कोई ज़मीन खरीदा, मैं नहीं जानता, तो स्टेक है तो वो इसमें पन्नीर सेल्वम को भड़काया होगा, मैं नहीं जानता, बट ऐसा सुनने में आ रहा है। तो मैं ये कहता हूँ कि जहाँ तक बीजेपी है उन्हें, ये तो गवर्नर ने अपनी जो कर्तव्य है उसकी पालन नहीं की, ये इससे ये क्राइसिस हुआ है।
राज्यपाल विद्यासागर राव पर बीजेपी के नेता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का तीखा हमला। उत्तर प्रदेश चुनाव जैसे मुद्दों पर सुब्रमण्यम स्वामी के इंटरव्यू का बाकी हिस्सा आने वाला है, पर कुछ देर में। अब चर्चा उत्तर प्रदेश की, जहां विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 11 फरवरी को होना है। इस चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 73 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होगा। ये मुजफ्फरनगर और शामली का संवेदनशील इलाका है, जहां 2014 में आम चुनाव से पहले हुए सांप्रदायिक दंगे में कई लोग मारे गए थे और हजारों बेघर हो गए थे, जिनमें से कई अब भी विस्थापित कैंपों में रह रहे हैं। ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, जहां कांग्रेस, सपा गठबंधन और बहुजन समाज पार्टी मुसलमान वोटरों को रिझाने की कोशिश कर रही है। इसी इलाके में फिलहाल हमारे संवाददाता जुबैर अहमद मौजूद हैं, उन्होंने वहां कई जगहों पे कई मतदाताओं से बात की।
मुरादाबाद की गलियों में नारे लग रहे हैं और ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के पक्ष में लगभग 50 कार्यकर्ताओं से घिरे मुरादाबाद शहर से मजलिस के उम्मीदवार हाजी शहाबुद्दीन घर घर जाकर लोगों से वोट मांग रहे हैं। हाजी शहाबुद्दीन स्थानीय हैं, लेकिन उनकी परेशानी यह है कि उनकी पार्टी को बाहर की पार्टी कहा जा रहा है।
बाहर की पार्टी तो आप नरेंद्र मोदी जी को भी ले लीजिए, वो कोई घर के तो है नहीं, वो भी बाहर के हैं कि यूपी में क्यों आ रहे हैं, गुजरात से चले थे तो वो यूपी में क्यों आ रहे हैं, बाहर का तो हर कोई है। सोच कहाँ की है आप इसको सोचिए, सोच तो सिर्फ हिंदुस्तान की है।
ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 34 उम्मीदवार खड़े किए हैं। राज्य में हैदराबाद की ये पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही है। शहाबुद्दीन की कार्यकर्ता उनके साथ रोड शो में खूब जोश में नारे लगा रहे हैं। हमारे कैमरे को देखकर उनकी आवाज़ और भी बुलंद हो जाती है, लेकिन उनके जोश को देखकर मतदाता उत्तेजित होते नज़र नहीं आते। मुरादाबाद के लोगों का कहना है कि मजलिस केवल मुसलमानों के वोट काटने का काम करेगी। एक वोटर ने कहा कि यूपी में उनका खाता भी नहीं खुलेगा, मगर वो मुस्लिम वोट काट सकते हैं। मुरादाबाद शहर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार और मौजूदा विधायक हाजी यूसुफ अंसारी मजलिस को भाजपा का एजेंट कह डालते हैं।
ये सिर्फ और सिर्फ एजेंट है बीजेपी के, तो ये हम लोगों के जहन में बैठ चुका है।
तो इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो पार्टी है वैसी साहब की, इसके बारे में भी आप कह रहे हैं कि बीजेपी?
बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल खुले मन से कह सकता हूँ कि ओवैसी साहब एक ऐसी पार्टी की मदद कर रहे हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बिहार में भी यही करा था और उनका कोई इसका नतीजा नहीं मिल पाया। और हमारे यहाँ के लोग तो बहुत होशियार हैं, उनको धूल चढ़ा दी जाएगी कि उन्होंने इससे पहले भी कोशिश की थी।
तो क्या यूपी विधानसभा चुनाव में मुसलमानों में मतों के बंटने की संभावना है, और अगर मुस्लिम वोट बटे तो इसका फायदा किसको होगा? इस बार का चुनाव तीन तरफा है, अधिकतर सीटों पर मुकाबला भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी की गठबंधन के बीच है। कहा यह जा रहा है कि जिन सीटों पर मायावती की बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मुसलमान हो, तो वहां मुस्लिम वोट विभाजित हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर देवबंद में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार मुस्लिम हैं और दोनों लोकप्रिय नेता भी हैं। उनके अनुसार मुस्लिम वोट को बंटने ना देने का प्रयास चल रहा है। बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए हैं, किसी और पार्टी ने मुसलमानों को इतनी बड़ी संख्या में टिकट नहीं दिया है। भाजपा ने तो एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में नहीं खड़ा किया है। मुसलमानों के वोट सभी पार्टियों को चाहिए। राज्य के कुल मतदाताओं का 20% हिस्सा मुसलमान है, लेकिन हाजी शहाबुद्दीन के अनुसार मुस्लिम समाज एक सामूहिक फैसला करके वोट नहीं देता।
वो कैंडिडेट से जुड़ना चाहता है, पार्टी से नहीं। पार्टी तो सत्ता में थी, और यहाँ पर मौजूदा विधायक भी सत्ता में थे, लेकिन आप मुरादाबाद की हाल देख लीजिए, जो वादे किए गए थे उसमें से एक भी वादा मुरादाबाद का पूरा नहीं हुआ।
बुधवार को रामपुर से समाजवादी पार्टी के विवादास्पद नेता आजम खान मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ मिलकर एक बड़ी रैली कर रहे हैं। इन नेताओं के आने से पहले मंच पर भाषण देने वाले सभी समुदाय के नेता मौजूद थे। भीड़ में हिंदू, मुस्लिम और सिख सभी नजर आए। आजम खान ने सभी समुदायों से वोट मांगे। रामपुर मुस्लिम बहुमत वाली सीट है। भीड़ में मौजूद कई मुस्लिम मतदाताओं ने कहा कि कोई मुस्लिम उम्मीदवार, यहाँ तक कि आजम खान भी, हिंदू वोटरों के समर्थन के बगैर चुनाव नहीं जीत सकते। जुबैर अहमद, BBC रामपुर।
कुछ देर पहले तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति पर आपने बीजेपी नेता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की राय सुनी। बीबीसी संवाददाता सलमान रावी से एक बातचीत में डॉक्टर स्वामी ने कहा कि विकास के नाम पर वोट नहीं मिलेगा, वोट मिलेगा तो हिंदुत्व के नाम पर। उन्होंने ये दावा भी किया कि वो 2 साल में राम मंदिर बनवा देंगे। लीजिए सुनिए पूरा इंटरव्यू।
मेरी राय में हम लोग जीतेंगे तो 3 बातों पर जीतेंगे कि इस पार्टी के लिए नेतृत्व है, नाम भले हम आगे ना करें परंतु काबिल लोग बहुत हैं। हमारे लिए, बीजेपी के लिए, हिंदुत्व और भ्रष्टाचार के विरुद्ध में अभियान, ये 2 बात पर हम शुरू हुए थे। 2G स्पेक्ट्रम में मैंने लड़कर, क्योंकि मैं बीजेपी में था तो बीजेपी को श्रेय मिला, और हिंदुत्व पर इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की संगठन है, उन्होंने प्रचार किया, लोगों ने जात के ऊपर उठकर हमें वोट दिया। अब ये कहना कि विकास से वोट मिलेगी तो फिर नरसिम्हा राव क्यों हारे? सबसे ज़्यादा विकास किसी ने 5 साल में किया है हमारे इतिहास में, वो नरसिम्हा राव थे, वो हार गए, उसकी पार्टी की शक्ति 1/2 हो गया। वाजपेयी ने इंडिया शाइनिंग कहा।
तो अब सबका साथ सबका विकास का क्या होगा?
मैं यही कहता हूँ कि सिर्फ ये कहोगे तो जीत नहीं सकते। और हिंदुत्व जरूर, ये हमारी निशानी है और उसको दिखाना चाहिए।
तो यूपी के चुनाव में फिर से वो राम मंदिर का मुद्दा जो है वो बहुत दिन तक खामोश रही बीजेपी, अब चुनाव में थोड़ी सुबुगाहट सुनने को मिल रही है।
नहीं, वो उससे नहीं होगा, क्योंकि हिंदुत्व तो मैं ही कर रहा हूँ और कोई नहीं कर रहा है,
इसीलिए तो मैं आप ही से पूछ रहा हूँ ये
तो
सवाल।
मैं नहीं, ऐसा नहीं होता। हमने तो तय किया है कि हम तो कोर्ट के जरिए करेंगे, कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे। ये आस्था होती है, आपका भी वो अलक्सा में एक आस्था है कि मोहम्मद वहाँ से ऊपर गए, किसी ने देखा तो नहीं परंतु एक आस्था है। हाँ, आस्था है। इसी प्रकार से बेथलेहम में, इस जगह में क्राइस्ट पैदा हुआ, आस्था है। हमें भी वो अयोध्या में, उस जगह में राम पैदा हुआ, आस्था है।
ये तो आप कह रहे हैं और आप कहते रहे हैं, लेकिन हाँ, आपकी पार्टी को क्या हो जाता है कि सिर्फ चुनाव के वक्त में यूपी के याद आता है और उसके पहले जो है सब भूल के रहते हैं?
मैं इन 2 साल के अंदर राम मंदिर बना दूंगा और उसके बाद ये आरोप आप लगा नहीं सकते।
तो ये बताइए कि वेस्टर्न यूपी में क्या बिल्कुल पोलराइजेशन के सहारे वोट हासिल करना चाह रही बीजेपी?
देखो, मुसलमान इकट्ठे होकर बीजेपी के विरुद्ध में वोट दे रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो हिंदू क्यों नहीं इकट्ठा हो सकता है? तो ये तो दोनों तरफ की बात है, दोनों बैठ के इसको खत्म करना चाहिए।
क्या आपको चुप करा दिया गया है पार्टी के अंदर बयान देने से? क्योंकि आप काफी मुखर होकर बयान देते थे, अचानक चुप हो गए आप।
जब मैं बोलता हूँ तो कहते हैं आ रहे हैं, बहुत बोलते रहते हैं, और कई लोग ऐसे भी चाहते हैं कि मैं बोलते रहूं ताकि कहीं ना कहीं मैं दिक्कत में पड़ जाऊं।
लेकिन आपको यूटिलाइज नहीं किया, ऐसा कुछ लोगों को लगता है।
मैं ये कहता हूं कि मुझे कुछ नहीं दिया तो फिर नुकसान मेरा हुआ है या उनका हुआ है जिन्होंने नहीं दिया? मैंने कभी मांगा नहीं। मैं अब 6 बार पार्लियामेंट गया हूँ, 3 बार लोकसभा, 3 बार राज्यसभा, 2 बार मिनिस्टर रहा हूँ। मुझे क्या स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री देंगे, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री देंगे?
फाइनेंस उम्मीद कर रहे थे लोग?
फाइनेंस कर रहे हैं, वो जेटली ने जिद किया, उसको दे दिया मैंने। मुझे कहा मुझे क्या जाता है, देश डूबेगा तो उसी की जिम्मेदारी है, ये है।
लेकिन आपके बयान से कभी कभी परेशान हो जाती है बीजेपी।
तो क्या मैं करूँ, कौन परेशान होता? ये सब पीछे पीछे तुम्हें बोलते हैं, मुझे मुँह पर बोलना ना। और मेरे ऊपर कई लोग आरोप लगाते हैं कि तुम्हारे दामाद मुसलमान है, कैसे तुम सहन करते हो? तो तब मैं मुसलमान का बुराई कहाँ करता हूँ? मेरी पत्नी पारसी है, मेरी सिस्टर इन लॉ क्रिश्चियन है, कोई नहीं मुझे कम्युनल कहता है।
बीजेपी नेता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का दावा कि मैं सांप्रदायिक नहीं हूँ, और उन्होंने ये भी कहा कि मैं 2 साल में राम मंदिर बनवा दूंगा। ये BBC हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिनभर। आज बृहस्पतिवार है और समय है आपकी राय का।
आपकी राय एक बार फिर से मैं हूँ इंदु पांडे और आज मेरे साथ हैं।
नमस्कार, मैं हूँ राजेश प्रियदर्शी।
तो राजेश जी, शुरू करें चिट्ठियों का सिलसिला।
जी बिल्कुल।
ये हमारे पास ईमेल आया है आशुतोष कुमार पांडे का, सुंदर सदन पकड़ी चौक आरा भोजपुर बिहार से। कहते हैं कि अभी हाल ही में राजेश प्रियदर्शी का एक लेख बीबीसी हिंदी की वेबसाइट पर पढ़ा। मेरा निजी अनुरोध ये है कि उक्त अति महत्वपूर्ण लेख को आप रेडियो पर प्रसारित कर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाएं। ये तो आपके लिए है।
बहुत धन्यवाद कि आपने उसको पढ़ा और वो आपको अच्छा लगा। मुझे लगा कि वो शायद पढ़ने की चीज़ है। रेडियो पर उसका किसी लेख का प्रसारण मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल काम इस मायने में है कि अगर 5 मिनट तक कोई उसको बोल कर पढ़ता रहे तो वो शायद वैसा न लगे जैसा आपको पढ़ते हुए लगा। इसलिए हमने ये निर्णय किया कि हम उसको सिर्फ प्रकाशित करेंगे वेबसाइट पर। आपको अच्छा लगा, इसके लिए आपका शुक्रिया।
इसके अलावा ये कहते हैं कि राजेश जोशी का बेजोड़ लेख पढ़ा ओमपुरी पर, उसे मैं रेडियो पर सुनने के लिए बेचैन था।
राजेश जोशी ने ओमपुरी से लंबी बातचीत की थी जिसको हमने कई तरह से ओमपुरी के निधन से पहले, ओमपुरी के निधन के बाद प्रसारित किया था अपने कार्यक्रमों में। हमारी वेबसाइट पर भी उसको जगह दी गई थी और अगर आप अब उसको ढूंढेंगे गूगल के जरिए या हमारी वेबसाइट पे तो आपको मिल जाएगा।
और आगे लिखते हैं कि समीर आत्मज मिश्र, जिनका नाम से ही लिखने नहीं आता, ऐसे इन्होंने लिखा है कि लगातार उत्तर प्रदेश चुनाव में मेहनत कर रहे हैं, ऐसी रिपोर्ट को सुनकर अच्छा लगता है, लेकिन अभी तक कोई जोरदार इंटरव्यू सुनने को नहीं मिला।
समीर आत्मज मिश्र का जो नाम आपने लिखा है उसमें बस म में बड़ी ई की मात्रा लगाने की जरूरत है, बाकी सब कुछ बिल्कुल दुरुस्त है। हम कोशिश यही कर रहे हैं कि नेता तो इतना कुछ बोल रहे हैं, इतना घूम रहे हैं, इतनी सारी बातें नेताओं की आप हर जगह सुन रहे हैं और वो सबको इंटरव्यू भी दे रहे हैं क्योंकि चुनाव का मौसम है। हम कोशिश ये करते हैं कि लोगों की आवाज़ें आप तक पहुँचे और आपको पता चल सके और एक्सपर्ट्स जो हैं, जो जानकार हैं राजनीति के, वो आपको बता सकें कि असल में क्या हो रहा है। हम सब जानते हैं कि नेता कब और क्या और क्यों कहते हैं।
जर्मनी पर मोहनलाल शर्मा द्वारा प्रस्तुत की गई दुनिया जहान बिल्कुल अच्छा नहीं लगा क्योंकि इन्होंने जर्मनी के राजनीतिक परिदृश्य को ठीक से सामने प्रस्तुत नहीं किया।
अगर आपने विस्तार से लिखा होता तो इस बारे में हम मोहनलाल जी से बात करते, उनको बताते कि ये कौन सी चीज़ थी जो आशुतोष जी को खटकी, लेकिन थोड़ा सा हमें पता नहीं चल पाया कि आपके कहने का आशय क्या है। फिर भी हम मोहनलाल जी को ये ज़रूर बताएंगे कि हमारे एक श्रोता को उनका कार्यक्रम पसंद नहीं आया।
आगे लिखते हैं कि राजेश जोशी, पंकज प्रियदर्शी तो रेडियो पे आ रहे हैं, लेकिन नाराजगी नहीं, गुस्सा इस बात पर है कि रूपा झा और मुकेश शर्मा रेडियो पर आने से जी चुरा रहे हैं।
नाराजगी नहीं है लेकिन गुस्सा है, इसमें फर्क क्या है? आप
ज्यादा गुस्सा है।
अच्छा ठीक है, आपकी ये बात उन दोनों तक अभी इस रिकॉर्डिंग के बाद ही पहुंचा दी जाएगी।
जी, लिखा है कि बीबीसी का नया संपादक कौन है।
बीबीसी के नए संपादक का नाम मुकेश शर्मा है और ये खास वजह ये भी है कि वो इसीलिए इन कार्यक्रमों में नहीं आ पाते कई बार, क्योंकि वो बहुत सारे और जो दूसरे ज़रूरी काम हैं बैठकों में और दूसरे तरह के जो प्रशासनिक काम हैं उनमें व्यस्त रहते हैं।
और हमारे पास कुछ पोस्टकार्ड हैं जो कहते हैं कि भाई जो फ्रीक्वेंसी की प्रॉब्लम है उसके बारे में बात किया है। यह है करिश्मा राठौर, बीएड की छात्रा हैं, कासगंज यूपी से लिखती हैं और ऐसी ही कुछ बात बहुत सारे लोगों ने लिखी है, तो मैंने सोचा मैं नाम पढ़ देती हूँ राजेश जी। जयंत कुमार दास हैं बिहार से और बहुत साल बाद रेहान फजल की विवेचना बहुत अच्छी लगी है, चाहे विषय कोई भी हो बहुत अच्छा लगता है उनकी विवेचना को सुनना। नारायण कुमार सिंह हैं ये, और रेडियो बीबीसी के जो शाम के प्रसारण हैं उस पर ओपी नैयर की जो विवेचना थी रेहान फजल की वो बहुत अच्छी लगी। अशोक कुमार ठाकुर मालीटोला आदलपुर जिला दरभंगा के रहने वाले हैं, इनको
विवेचना में हमारी कोशिश यही है और रेहान हमेशा ये चाहते हैं कि हर तरह के विषयों को उसमें शामिल किया जाए ताकि हर तरह की पसंद वाले जो हमारे श्रोता हैं उनको उसमें आनंद मिल सके। तो वो अंतर्राष्ट्रीय विषयों से लेकर फिल्म संगीत हर क्षेत्र के की जो हस्तियां हैं उनकी ज़िंदगी से जुड़ी बातें विवेचना में आपके लिए लेके आते हैं। ज़्यादातर लोगों को विवेचना पसंद आती है, हमें विवेचना के बारे में बहुत सारी चिट्ठियां मिलती हैं जो कि हमें वाकई बहुत अच्छा लगता है, और इसलिए भी कि रेहान उसमें बहुत मेहनत से और बहुत लगन से आपके लिए कार्यक्रम तैयार करते हैं।
तो राजेश جی چٹھیوں کا سلسلہ یہیں تک، اب پتہ بتا دیں؟
جی چلتے چلتے ہم پتہ بتاتے ہیں آپ کو، اگر آپ ہمیں ڈاک سے چٹھی بھیجنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے بی بی سی ہندی سیوا، پوسٹ باکس نمبر 3035، نئی دلی 110003، اور اگر آپ ہمیں ای میل لکھنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے hindi.letters@bbc.co.uk۔
اور اسی کے ساتھ نمسکار۔
اور اب کھیل سماچاروں میں، حیدرآباد میں بھارت بنگلہ دیش ٹیسٹ میچ میں بھارت 3 وکٹ پر 356 رن بنا چکا ہے۔ راکھی شرما کے پاس اور جانکاری ہے۔
نمسکار، کھیل سماچاروں کے ساتھ میں ہوں راکھی شرما۔ بھارت کی سرزمین پر بنگلہ دیش کے پہلے ٹیسٹ کی شروعات اچھی نہیں رہی۔ حیدرآباد میں کھیلے جا رہے ٹیسٹ میچ کے پہلے دن آج بھارت نے 3 وکٹ کھو کر 356 رن بنائے۔ اس میں بھارت کے 2 بلے باز مرلی وجے اور کپتان وراٹ کوہلی کے شتک شامل رہے۔ وجے 108 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے، لیکن وراٹ اب بھی 111 رن بنا کر کریز پر موجود ہیں۔ ان کے ساتھ دوسرے چھور پر اجنکیا رہانے 45 رن بنا کر کھیل رہے ہیں۔ حیدرآباد ٹیسٹ کے پہلے دن بھارت نے ٹاس جیت کر پہلے بلے بازی کو چنا۔ سلامی بلے باز کے ایل راہل آج بڑا یوگدان نہیں دے سکے اور 2 کے سکور پر تسکین احمد کا شکار ہو گئے۔ اس کے بعد چتیشور پجارا اور مرلی وجے کے بیچ دوسرے وکٹ کے لیے 178 رن کی ساجیداری ہوئی۔ دوسرا وکٹ پجارا کے روپ میں گرا، انہوں نے 83 رن بنائے۔ دن کے آخری وکٹ کے طور پر مرلی وجے پویلین لوٹے، انہیں تیج مل اسلام نے بول کیا۔ ناباد کھیل رہے بلے باز اجنکیا رہانے اور وراٹ کوہلی سے کل کے دن کافی امیدیں ہوں گی۔ رہانے کو انگلینڈ کے خلاف پچھلی سیریز میں 13 شتک لگانے والے کرن نائر کی جگہ شامل کیا گیا ہے۔ ان کی آج کی بلے بازی پر کھیل پترکار وجے لوکپلی کہتے ہیں،
جس ڈھنگ سے انہوں نے بیٹنگ کی دیکھی، پہلے شروعات میں رک کے کھیلے، پھر انہوں نے اپنے شاٹس بھی کھیلی ہیں۔ ایک خاص کر کے شاٹ جو انہوں نے میڈیم پیسر کو اٹھا کے سامنے لانگ آن پہ مارا شاٹ، وہ ٹیسٹ میچ کا شاٹ نہیں تھا، ایک کانفیڈنٹ بیٹسمین کا شاٹ تھا۔ تو رہانے ہمیشہ پریشر میں رکھے گئے ہیں، حالانکہ جیسے کوہلی نے بتایا کہ پچھلے 2 سال میں جو انہوں نے کام کیا ہے وہ آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے۔
اور وہیں پاکستان کرکٹ کے ون ڈے کپتان اظہر علی نے اپنے پد سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اظہر نے یہ فیصلہ اپنی خراب فارم کے چلتے لیا ہے۔ پی سی بی کے مطابق اظہر حال ہی میں آسٹریلیا کے خلاف پاکستان کی 1-4 سے ملی ہار سے نراش ہیں۔ ان کے مطابق کپتانی کا بھار اظہر کی بلے بازی پر اثر ڈال رہا ہے۔ پاکستان ون ڈے ٹیم کی کمان اب سرفراز احمد کے ہاتھ میں دے دی گئی ہے۔ کھیل سماچاروں میں فی الحال اتنا ہی۔
اور کھیل سماچاروں کے بعد آئیے ایک بار پھر سے چلتے ہیں عمران قریشی کے پاس، جو بنگلور سے ٹیلی فون لائن کے ذریعے ہمارے سمپرک میں ہیں۔ بات کرتے ہیں تمل ناڈو میں چل رہی راجنیتک رسہ کشی کی، او پنیر سیلوم اور سسی کلا کے بیچ۔ سسی کلا، کیا راجیہ پال سے ملاقات کر چکی ہیں عمران؟
جی، ملاقات ابھی بھی جاری ہے،
یعنی آپ کے پاس کوئی اور تازہ جانکاری نہیں ہے؟
تازہ جانکاری اتنی ہے کہ ابھی ہمارے سوتروں کے انوسار یہ پتا چل رہا ہے کہ شاید اگر راجیہ پال ان کو شپت نہیں دلائے فوراً،
جی،
تو شاید اتھارے ایم ایل اے کے ساتھ ششی کلا راشٹرپتی بھون پہنچ جائیں گے،
دلی پہنچ جائیں گی۔ یہ بہت دلچسپ بات ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ ششی کلا نے پارٹی ودھائکوں کو ایک ریسورٹ میں رکھ رکھا ہے جہاں انہیں موبائل فون کی اجازت نہیں ہے، ٹی وی نہیں دیکھنے دیا جا رہا ہے، تھوڑا سنکشپ میں بتائیے۔
جی، معاملہ یہ ہے کہ ریسورٹ پالیٹکس جو ہے وہ ہمارے دیش میں کرناٹک سے شروع ہوئی تھی،
پہلے بھی ہوتی رہی ہے۔ جی ہاں
ہاں، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کیونکہ جب کبھی بھی اندرونی پارٹی کے اس کے لیے کچھ وہ جھگڑا شروع ہوتا ہے، کسی بھی راجنیتک پارٹی ہو، بی جے پی ہو یا کانگریس ہو، یا پہلے تو انا چندرا بابو نائیڈو جو آندھرا پردیش کے ہیں، وہ یہ ان کا انوینشن ہے، مطلب وہ شروع کیے تھے 1995 میں۔
جی ہاں، جی بالکل،
1984 میں، مطلب جب این ٹی رام راؤ کی سرکار کو گورنر راج بی لال نے۔
جی ہاں، ابھی عمران اتنا وشے اتہاس میں جانے کا سمے نہیں ہے کیونکہ مکھیہ سماچاروں کا سمے ہو رہا ہے، بس اتنا ہی بتائیے 5 سیکنڈ میں کہ کیا ودھائک ان کے ابھی بھی ریزورٹ میں ہے یا نہیں؟
ہاں، ریزورٹ میں اسی لیے رکھے گئے ہیں کیونکہ کل ان کو راشٹرپتی بھون لے جائیں گے۔
دھنیواد بہت بہت عمران قریشی تھے۔ اور اب سبھا سماپتی سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔
بی بی سی سماچار۔ جرمنی کے چانسلر اینگلا مرکل شرنارتھیوں کے مدے کو لے کر جرمنی کے 16 راجیوں کے نیتاؤں سے ملاقات کریں گی۔ کینیا کے ہائی کورٹ نے ڈے ڈاب شرنارتھی شیور بند کرنے کے سرکار کے فیصلے کو پلٹ دیا ہے۔ یہ شیور صومالیہ کی سیما کے قریب ہے۔ سیریا کے الباب سے ملی رپورٹوں کے مطابق اسلامک اسٹیٹ کے ساتھ سنگھرش میں ترکی کے 5 سینکوں کی موت ہو گئی۔ بی بی سی سماچار۔
تو یہ تھے اب تک کے مکھیہ سماچار۔ اسی کے ساتھ ہی کاریہ سماپت کرنے کی اجازت دیجیے۔ آج تکنیکی پکش سنبھالا اجیت سارتھی نے، आपसे मैं फिलहाल विदा चाहता हूं। कल सुबह 6:30 बजे फिर मुलाकात होगी। हमें ज़रूर सुनिएगा। नमस्कार।